ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के संपर्क में महत्वपूर्ण सुधार करेंगी।
भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ी देर पहले यहाँ से 5400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहाँ की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहाँ गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी।
श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वंदे भारत रेलगाड़ियां बड़ी संख्या में चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्गापुर इस्पात नगरी होने के साथ देश के कार्यबल का एक प्रमुख केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पूरे बंगाल को मिल रहा है।
जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव गांव घर घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज बिहार के मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क तथा ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को झंडी भी दिखाई। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियां प्रदान करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा।
हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। नीतीश जी की सरकार ने यहाँ लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है।
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के अमेरिका के फैसले की सराहना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस फैसले के लिए अमेरिका के विदेश विभाग और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि ये भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी सहयोग की पुष्टि करता है। उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में 3 सदस्यीय आंतरिक समिति द्वारा लगाए गए महाभियोग को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए वे पत्र भी रद्द करने की मांग की है, जिनमें न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। यूक्रेन में रूस के संघर्ष को लेकर यूरोपीय संघ बैंकिंग, ऊर्जा और सैन्य औद्योगिक क्षेत्रों पर लक्षित 18वें प्रतिबंध पैकेज पर सहमत हुआ है। इस प्रतिबंध पैकेज में रूस के तेल और ऊर्जा उद्योग को और अधिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई गतिशील तेल मूल्य सीमा भी शामिल है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 500 अंक गिरकर 81,757 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 143 अंक नीचे 24,968 पर आ गया। शतरंज में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी फ्रीस्टाइल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन आर प्रज्ञानानंदा खिताब की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।